सत्संग के लिए, तो सत्संग नहीं करे तो यहां आना सार्थक नहीं है। ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो केवल अपने कल्याण के लिए ही है, अगर अपना कल्याण नहीं किया तो मनुष्य जरूर सार्थक नहीं है। ये उद्देश्य बनाना है, उद्देश्य बनाने की अपेक्षा भी उद्देश्य को पहचानना है। जैसे यहां से कोई बद्रीनारायण जाता है तो बद्रीनारायण जाने का उद्देश्य पहले बनता है, इसे यहां से रवाना होता है। ऐसे जब पहले उद्देश्य बनता है कि हमारा कल्याण हो, अथवा भगवान ये चाहते हैं कि इसका कल्याण हो, ऐसा विचार पहले बनता है, पीछे मनुष्य शरीर मिलता है। तो उद्देश्य पहले है, तो उद्देश्य पहले होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमें कि पहले, तो यहाँ भूल जाते हैं तो यहाँ उद्देश्य बनाना ये है, उद्देश्य को याद करना है कि मनुष्य किस लिए बनाया गया। पशु पक्षी आदि जितने जीव जंतु है उनकी अपेक्षा बहुत सी कमी है मनुष्य शरीर में, परंतु ये एक बात विलक्षण है कि अपना ये कल्याण कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, ये एक विलक्षणता है। उसके लिए विवेक शक्ति दी है, और में इतनी विवेक शक्ति नहीं है। देवताओं में है परंतु देवताओं को अधिकार नहीं है, और उनकी विवेक शक्ति भोगों में लगी हुई है। वो सुख भोगने के लिए गए हैं और नरकों में 84 में गए हैं, ये सब दुख भोगने के लिए गए हैं। मनुष्य भोगियों ने नहीं आए, ऊंची नीचे सब योग भोगियों नहीं आए, ये मोक्ष योनि है। मनुष्य शरीर केवल मुक्ति के लिए मिला है, तत्व ज्ञान के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। सदा के लिए दुख मिट जाए, मान आनंद हो जाए, इसके लिए मानव शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर का लक्ष्य है, उसको अगर प्राप्त नहीं किया तो मानव शरीर सफल नहीं है। कितने वैभव प्राप्त कर लें, कितना ही नाम प्राप्त कर लें, बहुत से विद्याएं, बहुत से हुनर सीख लें, परंतु कल्याण नहीं किया तो सब निरर्थक सके। एक कवि ने कहा कि राम बोल बोल सीखो सीखो गयो दूर में। एक परमात्मा का तत्व तो नहीं प्राप्त किया, तुम्हारा सीखा हुआ विद्या सब धूल में गया, कुछ काम नहीं है। ये खास बात है, भाई हो चाहे बहन हो, शरीर कोई सा ही हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, मनुष्य मात्र बनाया गया है कल्याण के लिए। तो ये बात याद रहनी चाहिए। जैसे आपको ये है याद करने नहीं पड़ती, हम यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, और सत्संग हो जाए चल बजे से अभी इकट्ठे हुए तो सत्संग करने के व्याख्यान सुनने के लिए, अब सुनने समाप्त हुआ चलते सब देंगे। एक काम था यहाँ ऐसे ही यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं भवन में, तो सत्संग समाप्त होता भी चलो समय हो गया अपने अपने घर जाओ। इसी तरह से यहाँ मनुष्य शरीर में आए हैं केवल अपने कल्याण के लिए। तो कल्याण कैसे हो कि ये जो उत्पत्ति विनाशशील एक चीज है, एक अनुत्पन्न तत्व है, तो अनुत्पन्न तत्व है, अविनाशी तत्व है, वो उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है, उसकी प्राप्ति के लिए मानुष ही मिला है। उत्पन्न और नाश में रहने वाले तो संपूर्ण जीव है, नरकों से लेकर स्वर्ग तक जितने जीव हैं, वे सब उत्पन्न विनाश होने वाली वस्तुओं में रमण करने वाले, विचरण करने वाले हैं। मानव शरीर ये एक ऐसा विलक्षण है कि उत्पन्न विनाश चीजों से ऊंचा उठना है, ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर मिला है। अगर यही ऐसे ही खो दिया तो बड़ी भारी भूल होगी, बड़ी तत्परता से ये लगना चाहिए कि जिस तरह से कल्याण हो चाहे जैसे हो अपना अपना उद्धार कर रहा है। तेरे भावे जो करे वो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरे क्या करते हैं यहाँ क्या नहीं करते हैं इस तरफ कोई ख्याल करने की जरूरत नहीं है, ख्याल ये करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी वो क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे, क्या निगाह रखनी चाहिए थी, क्या निगाह रखते हैं, धन की निगाह रखते हैं, सुख भोग की निगाह रखते हैं, सुविधा को छोड़ते हैं। यहाँ आते हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग करने के लिए, परंतु सुविधा की दृष्टि रहती है कि यहाँ सुविधा अच्छी होगी, सुख होगा, आराम होगा, इन चीजों की तरफ दृष्टि रखते हैं। तो ये दृष्टि तो स्वतः मात्र जीवों की है, कुत्ता है, गधा है, भैंसा है, सूअर है, नीचे नीचे पशु हैं, वे भी अपनी सुख सुविधा को देखते ही है, उनकी अकल में पूरी आवे ना आवे पर जितना समझते हैं वो सुख सुविधा को सब चाहते हैं, उसके लिए ही हम करते हैं। पर मानव शरीर सुख सुविधा के लिए नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, ये कोई ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, परंतु लक्ष्य यही रहता है हर एक जगह जाओ तो हमारा सुख मिले, सुविधा से रहे, आराम से रहे। ये नहीं है कि भाई हम कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, साधु बने चाहे गृहस्थ बने कुछ भी रहे, अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, सुख और आराम नहीं देखना है, शौक और सुखी नहीं करना है, खेल और कूद में नहीं जाना है, सांसारिक बातों में लुब्ध नहीं होना है। विनाशी चीजों में अगर हम फंस जाएंगे तो अविनाशी तत्व कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मौका केवल यही है, इस शरीर में ही है। तो उस परमात्मा के चरणों का शरण लो, भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का और वर्ण आश्रम और विद्या का आश्रय भी न लें, आश्रय केवल भगवान का। एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है प्रचातर तुलसीदास, एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, केवल भगवान की तरफ है, क्यों वही हमारा काम है असली। ये यहाँ का काम तो हो जाएगा, स्वास्थ्य आता है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, पहले प्रारब्ध बना दिया गया पीछे शरीर होता है, तो उसकी चिंता क्या करता है, खाने पीने का रहने का प्रबंध पहले हुआ है। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं तो ये पंडाल बनना, बिछोना करना, यहाँ सब तैयारी है, अब आओ यहाँ तो मनुष्य में भी ऐसी बात है कि जिसके लिए जाते हैं उनकी तैयारी पहले होती है, तो क्या परमात्मा की भूल हुई है कि जिसमें अपने इसकी बात चिंता में लग रहे हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध का तात्पर्य चिंता रहित होने में है। अपने खाने पीने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि उद्योग नहीं करना चाहिए। शरीर से परिश्रम करना, शरीर के निर्वाह के लिए शरीर से परिश्रम करना है, परंतु भीतर का विचार तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये तो सही का परिश्रम कर लिया अपने, सही चीज प्रेस में जा रहे वैसे, परंतु वास्तविक परिश्रम हमारा करना परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। तो ये हरदम जागृत रहनी चाहिए बात, हर समय। जैसे यहाँ आए हैं तो सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग कब होता है, कितने बजे से कई बजे तक होता है, इसका ख्याल करें वैसे हाजिर हो। इसी तरह से ये ख्याल रखेंगे परमात्मा की प्राप्ति करना है। कैसे बैठो है गफलत में, कैसे राम ऋतु नहीं जा, कैसे बैठा है गफलत में, कैसे बैठा है तुम, ऐसे समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए यहाँ, समय को सार्थक बनाना है। एक और दृश्य बात है कि मनुष्य शरीर इतना बड़ा है, इतनी उम्र दी है, जिसमें कई बार कल्याण करे, पर कल्याण तो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करना पड़ता, परंतु समय बहुत दिया है भगवान ने, समझ बहुत दी है भगवान ने, सामग्री बहुत दी है भगवान ने, संग दिया है, सत्संग दिए है, सत्शास्त्र दिए है, सद विचार दिए है, सत्संग दिया है, जो वास्तव में हम कल्याण कर सके ऐसी सामग्री भगवान ने जुटा कर दे दी है। जैसे कोई भूखा हो और न्याय युक्त शुद्ध भोजन सामने मिल जाए, फिर पाना पाना अपना बाकी रहता है, भूख मिट जाती है। इस तरह से हमें थोड़ा सा सावधान होकर इन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाना है, उसके लिए सामग्री सब मिली हुई है। मेरे तो कभी कभी ऐसे मन में आती है कि सामग्री कमी नहीं, बहुत बढ़िया मिली है, हरे को इतनी सामग्री नहीं मिलती जितनी सामग्री मिली है। ऐसी बात नहीं, हरे को नहीं मिलती जैसी मिली है। गीता जैसा ग्रंथ होते हुए भी गीता पर इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रचार, उस वहां उसके मूल में हम आकर बैठे हैं। गीता की कितनी चर्चा होती है, कितना पाठ होता है, उसी मूल में आकर बैठे हैं। अच्छे अच्छे संत महात्मा व्याख्यान बता यहाँ आ जाते हैं। बर्मी से सत्संग करते थे तो मेरे मन में आई थी, अच्छे अच्छे संत वहां जाते थे, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम और आगाड़ी कमल घाटी वहां रहने वाले अच्छे, और घूमते बिरखते घूमने फिरने वाले विरक्त संत आ जाते थे। उस समय बहुत अच्छे संत थे, वे घूमते आ जाते थे वहां, विचार आया कि देखो इतना को जावे तो कहाँ कहाँ जावे, पर संत आ जाते हैं इस तरह से आप सुनाने के लिए। तो अपना ढंग बहुत ठीक जमाया हुआ है शेठ जी का, तो ये ढंग जमाने में कितनी देरी लगती है, कितने गीता प्रेस के मकान बन गए हैं, बनने में कितने वर्ष लगे हैं, वो सब बड़ा बनाया काम है, सत्संग का सब ढंग बैठाया हुआ काम है, खाने पीने के रहन सहन की सब सुविधा बनाई हुई है। जैसे प्राण पहले बनता है पीछे शरीर मिलता है, ऐसे सत्संग करने के लिए, सदविचार करने के लिए कितना कितना सामान्य मिला हुआ है। पहले बर्मी से सत्संग होता था, सत्संग के बाद में जंगल में जल का लोटा भरा चले गया, कोई कहीं पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, ऐसे वृक्षों नीचे जंगल में बैठे रहते थे। मैं जब आया था इधर तो ऐसे देखा है मैंने। अब मैं जंगल में जाना यहाँ रहना शुरू कर दिया तो यहाँ भी तो बात ऐसी है। और अभी भी कोई भाई लोग जंगल में जाकर मिल में अपना समय बिताओ तो कौन मना करता है। सत्संग के समय यहाँ आ जाओ और समय अपना भजन साधन तत्परता से करो। गंगा जी किनारे बैठ कर किया जाए तो बड़ा अच्छा भजन होता है, जप होता है, कीर्तन होता है, चिंतन होता है। गंगा जी की हवा सहायता देती है, मदद देती है। ऐसा सुंदर मौका मिला है, कैसा सुंदर गंगा जी सब जिसमें दुनिया सब में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। उस गंगा जी के किनारे और उत्तराखंड की भूमि जो तपोभूमि है, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े धनी आदमी वे भी अपने शेष बाकी आयु रही हुई उम्र में यहाँ आकर के साधन करते थे। वो देश है, वे गंगा जी है, उत्तर प्रदेश है वो, और अपना आए हुए हैं। उस सत्संग का मौका है, क्या करें ख्याल नहीं करते आप। अपने देश में दूर देश में भी रहने वाले सज्जन यहाँ आते हैं सत्संग करने के लिए, सद विचार साधन करने के लिए। ऐसे ऐसे मनुष्यों का, माता बहनों का, भाइयों का दर्शन नहीं होता। एक एक गांव में जाकर के पूछे भाई अच्छे अच्छे आदमी का हम दर्शन करना चाहें तो पहचान नहीं सकते, मिल नहीं सकते। यहाँ देशों गुण गांवों से घरों से तू ये आदमी जो सत्संग रुचि करने वाले ऐसे चुने हुए आए हुए सब सब प्राय करके इस पर भजन में लगने वाले आए हैं। तो ऐसे पुरुषों का स्त्रियों का ऐसा दर्शन गौरव है वो ये हमारे मिल रहा है। इतना बढ़िया समुदाय मिल रहा है, ऐसी बड़ी मदद मिल रही है, ऐसा हमें साथ मिल रहा है, ऐसा संघ मिल रहा है, ऐसी तात्विक बातें मिल रही है जिससे कल्याण हो जाए, बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी बातें हमारे को मिल रही है। अब थोड़ा सा उद्योग और करें, जैसे बताया ना भोजन की सामग्री शुद्ध न्याय युक्त बढ़िया मिल गई और भूख लगी हुई है तो हमारे तो पाना ही शेष रहा। ऐसे सब सामग्री मिल रही है केवल बस पाना है, वो काम में लाना है, वैसा जीवन बनाना है। ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है। तूल गंज इतना पते मन मृत्यु या वो जब तक मौत नहीं हो तब जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए ये सब कर लेना चाहिए। भागवत में कहा है विषया करो सर्वत्र, ये सुख सुविधा विषय तो सब चीज मिलेगा। शरीर का आराम की चीजें, भोगों की चीजें, ये तो कौन सी जूने में नहीं मिलता। कीट पतंग बड़ी नीची जूने वाले जीव है उनको भी मिल रहा है, उनके भी बाल बच्चे होते, उनको कौन सी कमी रह जाती है। ये चीज नहीं मिलती, ये चीज तो यहाँ ही मिलती है, मानव शरीर में ही इसका मौका है। और वो मौका अगर खो दिया तो फिर कहाँ मिलेगा बताओ। ये तो अवसर अभी है, दूर रमते इतना पते इधर मृत्यु जाओ, जब तक मौत ना आ जाए तब जल्दी से जल्दी यत्न करना चाहिए निश्चेष आए कल्याण के लिए। विषय करो सर्वत्र सुखो मंडे गभराजन स्वर्गे नरक होगा। विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख तो नरकों में मिल रहा है, स्वर्ग में मिलता है, नरकों में भी मिलता है। नरकों में भी खाना पीना मिलता है, नरकों में भी कठोर से कठोर यात्रा देने पर भी आराम मिलता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी नार की जीव मरता नहीं है। जब तक नर उसके नरक भोगने के लिए जितना कर्म मिला है उनके भोगने से पहले वो मरेगा नहीं। टुकड़ा टुकड़ा कर दो पीछे जुड़ करके शरीर बन जाएगा तो टुकड़ा टुकड़ा करने में कितना कष्ट होता है। इतने कष्ट में जुड़ जाता है, आराम मिलता है तो हवा लगती है तो आराम मिलता है तो सुख वहां ही मिल जाएगा। सुखम एम राजन स्वर्गीय नरक ही बाबा, स्वर्ग में मिलता है नरकों में मिलता है, परंतु कल्याण की बात कहाँ मिलती है, उद्धार की बात कहाँ मिलती है। अपने इस मृत्यु लोग में केवल उद्धार के लिए आए हैं, ऐसे संपूर्ण जीवों के मनुष्यों के लिए सत्संग का मौका कितना कम मिलता है। वास्तविक तात्विक बातें बहुत कम मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो देखा, मेरे बटने का फेरने का काम बहुत पड़ा है, बहुत कम जगह ऐसी बात है जो तात्विक बातें मिले, जीव के कल्याण की बात मिले, गहरे विषय की बात मिले, पढ़ाई में गहरी बात नहीं मिलती। व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में गहरी बात बताने वाले नहीं मिलते और जानने वाले बताते नहीं, पढ़ाई में भी ऐसा मौका नहीं मिलता। पारमार्थिक भी और बहुत कम हुए, जितने आपको पढ़े लिखे विद्वान मिलेंगे इतने साधक नहीं मिलेंगे, पारमार्थिक साधना करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और साधन करने वालों में ऊंचे उठे हुए साधक ऐसे बहुत कम मिलेंगे, विद्वान अच्छे अच्छे मिलेंगे, विद्वानों में भी कमी रहती है, मगर अच्छे अच्छे विद्वान जितने पढ़े लिखे मिलेंगे इतने नहीं मिलेंगे। ऐसे लौकिक गाना है बजाना है, ऐसी चीजें है ज्योतिष है आदि देखने वाले कई मिलेंगे, परंतु पारमार्थिक तत्वों की तरफ ख्याल करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अपना उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो वो अभी मौका हमारे को मिला हुआ है, ऐसा संग भी मिला है, ऐसी बातें भी मिलती है, हमारे को ऐसे आदमी मिले हैं कि हमारी शंकाओं का समाधान कोई करेगा। तरह तरह की शंकाएं, परंतु यहां मैं ये मानता हूं कि शंका ऐसी नहीं रहती, क्या करें कैसे करें, समाधान हो जाना हर एक जगह नहीं मिलता है। हमारी खुद की भोगी हुई बात है, हम रहते थे एकांत में करते थे, परंतु कोई शंका पूछे किसने, कागजों से पूछते थे, कल्याण में लेख आते हैं, उन लेखों के द्वारा लेखों के नाम सुन सुन करके हम लोगों ने पत्र दिए हैं, भाई इसका क्या समाधान है, इसका क्या समाधान है, ठीक बढ़िया समाधान नहीं मिलता है। भूख के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, प्यास के अनुसार जल नहीं मिलता है, हमारे समाधान के अनुसार हमारी शंका के अनुसार समाधान नहीं मिलता है। यहां आप विचार करें तो बहुत आप में कम होंगे कि हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ, हमारे संदेह और निवृत्ति नहीं हुई, ऐसे बहुत बहुत कम मिलेंगे, थोड़े बहुत ही मिलेंगे। कोई संतोष संकोच के कारण नहीं कहते, किसी कारण से परिस्थिति में आकर नहीं कहते, पर पूछते हैं उनको मिलता है, अगर नहीं मिलता तो हम उद्योग करते हैं, हम तो परिश्रम करने को तैयार है। कोई पूछे हमें पूछने वाला बुरा नहीं लगता है, क्यों, पूछने वाला तो पूछता है अपने लिए, लाभ होता है मेरे, ये मैंने देखा है, मेरा लाभ होता है उससे। तो जितना पूछेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, तो बहुत लाभ होता है। पूछने से बहुत विषय खुलता है, अच्छा तो समाधान ठीक होता है, और कम ही रहता है तो फिर खोजो, कोई यहाँ का ठेका नहीं जब यहाँ ही होता है, और जो खोजो अच्छे अच्छे पुरुष मिलेंगे, उत्तराखंड में बड़े अच्छे अच्छे योगी रहते हैं, बहुत वर्षों से ये प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ पहाड़ों में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं, सैकड़ों वर्षों की उम्र वाले आदमी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और साधु में परायण है, उनसे मतलब नहीं संसार से कुछ भी, कुछ लेना नहीं है, केवल इसमें लगे हुए रहते हैं। तो वे नहीं मिले तो अपन मेरे दर्शन से काम चलाओ भाई, और क्या करें, बढ़िया भोजन मिले तो अच्छा है, पर रोटी दाल खा कर यही काम चलाओ, है जैसे नहीं तो अपना तो काम चल सकता है ना, रोटी से पेट तो भर जाता है। इस जैसा अपने मिला हुआ है तो लाभ लेना चाहिए, उसके लिए पहले उद्देश्य लक्ष्य अपना एक स्थिर हो कि हमें तुम्हारा कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपना भवन गुहार। तो ये लक्ष्य बनाकर ये तत्परता से चलना चाहिए। नारायण 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 नारायण।